नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भारत ने 100 गीगावाट सौर फोटो वोल्टेक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना करते हुए इसे आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में प्रयास बताया। उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की स्वीकृति। सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर आज सुनवाई करेगी। और मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश की आशंका व्यक्त की। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद क्षेत्रीय चैनलों से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है।
घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में तिरंगा रैलियां निकाली गईं और राष्ट्रीय ध्वज की बड़े पैमाने पर बिक्री और वितरण भी किया गया। स्कूलों में विशेष सजावट, रंगोली, चित्रकला, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिला प्रशासन ने कल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कई तिरंगा रैलियों का आयोजन किया। राजौरी के उपायुक्त अभिषेक शर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों ने नांगा थूप कोटरंका से घुड़सवार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता की उल्लेखनीय उपलब्धि और स्वच्छ ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों की सराहना की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मॉड्यूल और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची के तहत वर्ष 2014 में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता केवल 2.3 गीगावाट थी, जो अब 100 गीगावाट हो गई है। एक रिपोर्ट।
ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना जैसे क्रांतिकारी प्रयासों को जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन खत्म करने के वैश्विक प्रयासों के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2019 में सौर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स के स्वीकृत मॉडल और विनिर्माता ALMM ऑर्डर पेश किया था, जिसकी पहली सूची में 8.2 गीगावाट क्षमता को शामिल किया गया था। केवल 4 वर्षों में यह क्षमता 12 गुना से बढ़कर 100 गीगावाट हो गई है। इसमें 100 निर्माताओं द्वारा 123 विनिर्माण इकाइयों का संचालन शामिल है, जो 2021 में 21 थीं। ये वृद्धि स्थापित और नई दोनों प्रकार की कंपनियों के योगदान को दर्शाती है। इनमें से कई कंपनी उच्च दक्षता वाली प्रौद्योगिकियों और एकीकृत संचालन को अपना रही है, जिससे घरेलू और वैश्विक मांगों को पूरा करने में सक्षम प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का निर्माण हो रहा है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप सी के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा और अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल के आदेश की आज फिर समीक्षा की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने इसके लिए न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ का गठन किया है। एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों के परस्पर विरोधी निर्देशों का उल्लेख किया था, जिसके बाद कल मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि वे मौजूदा मुद्दे की जांच करेंगे। इससे पहले न्यायालय की एक पीठ ने आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर वापस छोड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। 11 अगस्त को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 8 हफ्तों के भीतर सभी क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें नगर निगम के आश्रय स्थलों में रखने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत का ये आदेश उस मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान के बाद आया था, जिसमें आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों के कारण रेबीज फैलने की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के विजन दस्तावेज पर विधानसभा में 24 घंटे की गहन चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर पहली बार 24 घंटे तक चल रही बहस के दौरान सरकार के मंत्री आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे की योजनाओं का खाका पेश कर रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब राज्य विकास के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएंगे। प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस लंबी बहस के दौरान विजन डॉक्यूमेंट का पहला मसौदा तैयार किया जाएगा, जिस पर जनता की राय ली जाएगी और उसके बाद एक अंतिम दस्तावेज जारी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो रही है कि 2047 में हम कैसे उत्तर प्रदेश को विकसित देश के जो मानक है वहाँ पे पहुँचाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपनी डेस्टिनेशन मंजिल तय करते हैं, रास्ता तय करते हैं और तय करते हैं कि इसमें समय कितना लगेगा, तो ये चीजें तेजी से होती हैं।
लंबी चर्चा के दौरान मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और 2047 तक उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
केंद्र कपड़ा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने, नए बाजारों के लिए रणनीतियों की पहचान करने और नए बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 समितियां गठित करेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कल नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार चुनौतियों से निपटने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री सिंह ने उभरते वैश्विक व्यापार परिदृश्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय वस्त्र उद्योग 2030 तक $100 अरब के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बैठक में अमरीकी शुल्कों की घोषणा और इस क्षेत्र के लिए विश्वसनीय और दूरगामी रणनीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारतीय निर्यात पर हाल में लगाए गए अमरीकी शुल्कों का प्रभाव अल्पकालिक होगा और 1 या 2 तिमाहियों में कम हो जाएगा। उन्होंने मुंबई में कहा कि रत्न तथा आभूषण, झींगा और वस्त्र जैसे क्षेत्र आरंभिक दौर में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रहेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने धैर्य रखने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार स्थिति से अवगत है और प्रभावित क्षेत्रों के साथ बातचीत कर रही है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में भी तेज बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के छुटपुट क्षेत्रों में शनिवार तक ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली और उसके आसपास आज सुबह हल्की बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के लोगों को बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश में बीते दिन 3 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू जिला की श्रीखंड पहाड़ियों पर बादल फटने से साथ सटे शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई, जिसके चलते गानवी जल विद्युत परियोजना का वाहन योग्य पुल और गांव को जोड़ने वाला प्रमुख पैदल पुल पूरी तरह ढह गए, जिससे 3 ग्राम पंचायतों गानवी, कियाव और कूट के कई गाँव का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। इसी तरह कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल में बादल फटने से कुरपन खड्ड में बाढ़ आने से कई पैदल पुल बह गए। वहीं जिला के बंजार उपमंडल में बादल फटने से उत्पन्न विषम परिस्थिति और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने आज उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
जी फरहत, खेलों की दुनिया में सबसे पहले बात कल हुई भारतीय ओलंपिक संघ की विशेष आम बैठक की। बैठक के दौरान वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए देश की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई। अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो खेलों का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। और फरहत, अगर बात करें क्रिकेट की तो भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। रैंकिंग में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पहले स्थान पर कायम हैं, वहीं विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव दूसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा भारत के गुलवीर सिंह बुडापेस्ट में पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ की गैर ओलंपिक स्पर्धा में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए पांचवें स्थान पर रहे। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7:34.49 का समय लेकर अपने ही पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फरहत, खेलों की दुनिया से बस आज इतना ही।
आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। 1947 में आज के दिन भारत के विभाजन के दौरान हुई लोगों की पीड़ा और असहनीय कष्टों को याद किया जाता है। इस दिन राष्ट्र उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने 1947 में विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी और अल्पकालीन वेदना को सहन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति भवन में ये उत्सव आम जनता शनिवार से 14 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक देख सकेगी। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क होगा। उद्यान सोमवार के दिन बंद रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
धन्यवाद फरहत। भारत दुनिया का सबसे अधिक मांग वाला ग्राहक बाजार बनने को तैयार, अमर उजाला की खबर है। पत्र लिखता है, मॉर्गन स्टैनली ने कहा, घटती महंगाई और ब्याज दरों में नरमी से देश में बढ़ेगी मांग। टैरिफ वॉर के बीच अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित, राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों की सुर्खी है। स्वतंत्रता दिवस पर लंबे वीकेंड के चलते यात्रा गतिविधियां बढ़ी, ट्रेन और एयर टिकट की बुकिंग में तेजी से हुआ इजाफा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटलों के किराए भी बढ़े, राष्ट्रीय सहारा ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। आवारा कुत्तों पर आज सुप्रीम बेंच करेगी सुनवाई, पंजाब केसरी सहित अधिकतर अखबारों की खबर है। लोक सत्य लिखता है, पुनर्विचार की अपील पर सीजेआई ने उठाया कदम, वहीं हिंदुस्तान ने लावारिस कुत्तों पर आंकड़े प्रकाशित किए हैं। पत्र लिखता है, कई देशों ने इस फैसले पर कड़े कदम उठाए, देश के अन्य राज्यों में भी लावारिस कुत्तों पर यह फैसला लागू करने पर विचार चल रहा है। दैनिक भास्कर ने स्पेन के सैन सेबेस्टियन शहर में पारंपरिक उत्सव की रोचक तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, 100 साल पुराना पायरेट बोटिंग फेस्टिवल डाकू की वेशभूषा में जश्न। भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली लगाएगा, बोली लगाने की दी औपचारिक मंजूरी, सभी पदक जीतने वाले खेल होंगे शामिल, दैनिक जागरण के खेल पत्र की खबर है।
धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भारत ने 100 गीगावाट सौर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की स्वीकृति। और मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।